हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब तो दादाजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शालिनी की तो टांगे पूरी तरह से कांपने लगी थीं। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में इस तरीके से उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। उसकी हैरानी अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में जान ही न बची हो। उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह जम चुका था। लेकिन दादाजी ने गहरी नज़रों से वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और बोले थे, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने सोचा था कि एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और आप सबको अपनी पोती से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया है। इसलिए हम आप लोगों से यही मिलना चाहते थे और इसी वजह से हम यहाँ साथ में आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिस वजह से हमें रुकना पड़ा, और इस बीच हमारी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ इतना सब कुछ हो गया जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दादाजी की ये बातें सुनते ही मिस्टर वर्मा, जिन्होंने थोड़ी देर पहले झलक के साथ बदतमीजी की थी, उनके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने असल में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मालकिन खड़ी होगी और वो उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर बैठेगा। अचानक वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत झलक के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगा था, क्योंकि झलक अब इतनी ताकत रखती थी कि वो अकेले ही कई वर्मा इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर सकती थी। वर्मा को इस तरह माफ़ी मांगते हुए देखकर शालिनी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने तो झलक की हद से ज़्यादा बेइज्जती की थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाई और दादाजी के सामने खड़ी हो गई। वो उन्हें घूरते हुए बोली थी, सर ये सब अचानक से कहाँ से हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर दादाजी ने गहरी नज़रों से शालिनी को देखा और बोले थे, तुम कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा शांत रहो, वैसे भी तुम हमारी कंपनी का हिस्सा हो। हाँ ये बात अलग है कि हमने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इख्तियार दिए थे ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज से दूर रहकर अपनी पोतियों को ट्रेन कर सकें, ताकि वो एक ही बार में सब कुछ अच्छे से सीख सकें। इतना कहते ही वे गार्ड, जिन्होंने पहले झलक को घेर रखा था, एक एक करके झलक के सामने आकर झुक चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अब झलक से रहम की भीख मांग रहा हो, क्योंकि अब सबको ये डर लग रहा था कि पता नहीं झलक क्या फ़ैसला लेगी। इतनी बड़ी एम्पायर की सीईओ बनना कोई आम बात नहीं थी। फिलहाल झलक ने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा जाकर एक शांत जगह पर खड़ी हो गई। वो अपने फ़ोन में बिजनेस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स स्क्रॉल करने लगी थी। झलक का ऐसा एटीट्यूड देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। इसी बीच आदित्य राणा को लगा कि अब कुछ कहना चाहिए। वो तुरंत दिग्विजय सिंह जी के पास आया और उनसे हैंडशेक करते हुए बोला था, सर मेरा नाम आदित्य राणा है और मैं स्पेशली यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। ये सुनकर दादाजी के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट आ गई। अरे भाई बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात किए, कैसे हो? दादाजी की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपसे मिलने के लिए ही आया था। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि इस फील्ड में आप किस तरीके से इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। आपने जिस तरह से अपना मुकाम बनाया है वो काबिले तारीफ है। तभी दादाजी आदित्य की तारीफ करते हुए बोले थे, आज की यंग जनरेशन को तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनफैक्ट यह है कि मैं अपनी झलक से भी यही कहूँगा कि वो आपसे बिजनेस के सारे ट्रेडिंग पॉइंट सीखे। जैसे ही दादाजी ने ये कहते हुए झलक की ओर इशारा किया, झलक ने सिर उठाकर आदित्य को देखा और फिर बेपरवाही से दोबारा अपने फ़ोन में खो गई। झलक का ये रूखा बिहेवियर देखकर दादाजी थोड़े हैरान हो गए थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि आखिर ये लड़की ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, कम से कम एक हल्की सी मुस्कुराहट तो दे सकती थी। लेकिन झलक अपने एटीट्यूड में ही बैठी रही, उसने आगे बढ़कर आदित्य से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि दादाजी समझ रहे थे कि आज झलक के लिए दिन काफ़ी भारी रहा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर झलक की ओर देखते हुए कहा था, मिलो, इन्हीं के लिए तो हमने ये सारी मीटिंग रखी थी, आप सब लोगों को इन्हीं से मिलवाने के लिए बुलाया गया था। ये कहते हुए दादाजी ने सभी लोगों को बारी बारी से देखा। तभी झलक आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली थी, मैं आप सबसे पहले ही मिल चुकी हूँ, आप लोग आधा घंटा लेट आए थे और तब तक मैं इन सभी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर चुकी हूँ। मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि कौन कितनी देर में क्या कर सकता है। ये है मिस्टर राठौर। इतना कहते हुए झलक ने बिजनेसमैनों की लाइन में बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया, आप अपने काम के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देते। पिछले आधे घंटे में कम 25 बार आप अपना फ़ोन चेक कर चुके हैं और साथ ही आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स भी अटेंड की हैं जो किसी फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड थीं। फिर झलक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर राठौर आपके साथ बिजनेस करने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया। इस तरह की तारीफ सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वहीं आदित्य को ये सब बेहद इम्प्रेसिव लग रहा था। इतनी देर तक जो कुछ भी हो रहा था उसे इग्नोर करते हुए झलक ने बाकी सब लोगों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखी थी। ये देखकर सब लोग हैरानी में डूब गए थे। इसी तरह झलक ने मिस्टर चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा था, विष्णु चौहान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ मौजूद ड्रामे को एंजॉय जरूर किया, लेकिन आपने अपनी नजरें अपने लैपटॉप से नहीं हटाई। इसका मतलब यह है कि आपको हर फील्ड और हर चीज में दिलचस्पी है। चाहे यहाँ कुछ भी ड्रामा चल रहा हो, आप उसमें सीधे शामिल होने के बजाय दूर से उसे देखना पसंद करते हैं। आपने यहाँ हो रही हर चीज को एक तमाशे की तरह लिया, लेकिन खुद को उससे अलग रखा। रियली इट्स परफेक्ट। वैसे भी हमें किसी के मामलों में नहीं घुसना चाहिए और प्रोफेशनल दूरी बनाए रखनी चाहिए। मुझे आपका भी कैरेक्टर पसंद आया और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आपके साथ भी काम करेगी। इस तरह झलक ने एक एक करके लोगों की पर्सनैलिटी को पढ़ते हुए उनके साथ काम करने का फैसला लिया। फिर वो सीधा मिस्टर वर्मा की ओर मुड़ी और उन्हें देखते हुए कहा था, आपको भी मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है मिस्टर वर्मा, आपने इस पूरे मामले में भी अपना फायदा देखा। इतना ही नहीं, आपने यहाँ दो लड़कियों को देखा जो आपको कमजोर लगी और शायद आप ये सोच रहे थे कि अगर आप उन्हें नौकरी का लालच देंगे तो वे आपकी तरफ आकर्षित होंगी और आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। औरतों पर गंदी नजर रखने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। एक पल पहले तक सबको लग रहा था कि झनक जिसकी तारीफ कर रही है उसके साथ वो जरूर काम करेगी। ये बात आदित्य को भी एक पल के लिए अजीब लगी थी। वो बीच में कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर खुद को रोककर चुप ही रहा। फिलहाल दादाजी को ये सब देखकर गर्व महसूस हो रहा था। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी पोती यहाँ इतनी सारी चीजें सहते हुए भी हर किसी को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी, कौन उसके लिए सही है और कौन गलत। वहीं अधामिका ने पहली नजर में ही आदित्य को देखकर झलक से उसके बारे में सवाल किया था। झलक ने एक पल के लिए आदित्य को देखा, फिर सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, मिस्टर आदित्य राणा, मुझे नहीं पता कि दादाजी की आपके परिवार से कितनी गहरी दोस्ती है, लेकिन मुझे लगता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाएगी।
झलक की ये सीधी और साफ बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन आदित्य राणा के साथ बिजनेस करने से मना कर देगी, वो भी इतनी बेझिझक। ये बात वहां मौजूद लोगों को ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे जैसी लग रही थी। ये सुनते ही दादाजी को अचानक खांसी आने लगी। वो सोच में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए। वो तुरंत झलक के पास पहुंचे और उसका सहारा लेते हुए उसके कंधे के पास झुककर बोले थे, क्या कर रही हो बेटा, वो मेरे दोस्त का बेटा है, प्लीज। लेकिन झलक ने दादाजी की ओर सिर्फ एक नज़र देखा, बिना एक भी शब्द कहे। फिर वो सीधा सीईओ के केबिन में गई और वहां जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई।